पाशुपत मत और शैवागम। हमारे आलोच्य काल में शैवों का पाशुपत मत अधिक प्रबल था। ह्योत्सांग ने अपने यात्रा विवरण में इस मत का बार बार उल्लेख किया है। बाणभट्ट के ग्रंथों में पाशुपतों की चर्चा और शंकराचार्य ने अपने शारीरक भाष्य में इस मत का खंडन किया है। लिंग पुराण से पता चलता है कि उस समय पाशुपत मत की शाखाएं थीं वैदिक, तांत्रिक और मिश्र। तांत्रिक पाशुपत लिंग तप्त चिन्ह और शूल धारण करते थे। वैदिक पाशुपत लिंग रुद्राक्ष और भस्म धारण करते थे तथा मिश्र पाशुपत समान भाव से पंचदेवों की उपासना करते थे। उदाहरण स्वरूप श्रीकर भाष्य में उद्धृत है, तांत्रिकम वैदिकम मित्रम त्रिधा पाशुपतम शुभम तप्त लिंगा कशूल आदि धारणम तांत्रिकम मतम। लिंग रुद्राक्ष भस्मादि धारणम वैदिक भवेत रविम शंभु तथा शक्तिम विघ्नेशम च जनार्दनम यजन्ति संभावेन मिश्रम पाशुपतम हितत। वामन पुराण अध्याय 5 से शैव पाशुपत काला मुख और कपाली जाति के पाशुपतों का पता चलता है। हमारे आलोच्य काल के पूर्वाधर्ध में लकुलीश के पाशुपत मत और कपालिक संप्रदायों का पता चलता है। गुजरात में लकुलीश पाशुपत का प्रादुर्भाव बहुत पहले से ही हो चुका था, पर पंडितों का मत है कि उसके तत्व ज्ञान का विकास विक्रम की 7वीं-8वीं शती में हुआ होगा। यह मत इस समय तक मध्य और दक्षिण भारत में फैल चुका था। वे लोग जीव मात्र को पशु कहते हैं, शिव पशुपति है। पशुपति ने बिना किसी कारण साधन या सहायता के इस जगत का निर्माण किया है। पशुपति ही समस्त कार्यों के कारण है। दुखों से अत्यंतिक निर्वृत्ति और परम ऐश्वर्य प्राप्ति, इन दो बातों पर इनका विश्वास था। कपालिक लोग वाम मार्गी थे, संभवतः गृहस्थों में इनके सिद्धांतों का प्रचार नहीं था। भवभूति के मालती माधव में चामुंडा पूजक और अघोर घंट नामक कपालिक का वर्णन है। ये लोग मानव बलि भी दिया करते थे। अनुश्रुति के अनुसार शैवागमों की संख्या 28 है और उपागमों की 170। कुछ पंडित आगमों के बनने का स्थान उत्तर विशेषकर कश्मीर बताते हैं। दक्षिण के शैव भक्तों की चर्चा हम ऊपर कर चुके हैं, जो 3 प्रसिद्ध शैव भक्त हो गए हैं। उनके नाम हैं ज्ञान संबंधर, अप्पर और सुंदर मूर्ति। प्रथम 2 भक्त विक्रम की 7वीं शती के उत्तरार्ध में हुए और अंतिम 8वीं-9वीं शताब्दी में। यद्यपि इनके भजनों में आगमों की बात आ जाती है, तथापि मूल रूप से महाभारत और पुराणों से ही प्रभावित बताए जाते हैं। एक अत्यंत प्रभावशाली कवि मणिवाचकर हुए हैं विक्रम की 10वीं सदी, जो भाषा, भाव, तत्व ज्ञान और काव्य मर्म के उत्तम जानकार थे। इनके विषय में जो कुछ बातें हम नाना सूत्रों से जान सके हैं, उनसे विदित होता है कि ये तमिल शैवों के तुलसीदास कहे जाते हैं। इनकी रचनाओं में आगम का प्रचुर प्रभाव है। इस काल में शैवों की एक अत्यंत महत्वपूर्ण शाखा कश्मीर में थी। इस शाखा की तत्व विद्या पर आगमों का प्रभाव है। शाखा के दार्शनिक मत को प्रत्यभिज्ञा त्रिक्या स्पंद कहते हैं। शिव भक्ति और अणु या पशु, पास और पति, इन तीनों का प्रतिपादन होने से इस मत को त्रिक कहते हैं। अनुश्रुति है कि शिवाजी ने अपने शैवागमों को द्वैत परक व्याख्या देकर अद्वैत सिद्धांत के प्रचारार्थ इस मत को प्रकट किया और दुर्वासा ऋषि को इसे प्रचार करने का आदेश दिया। इस मत के मूल प्रवर्तक आचार्य वसुगुप्त विक्रम की 8वीं शती में हुए होंगे। कहते हैं कि शिव सूत्र में के 77 सूत्र महादेवगिरी की किसी शिला पर उत्कीर्ण थे। स्वप्न में शिव जी द्वारा आदेश पाकर वसुगुप्त ने उनका उद्धार किया था। इन्हीं सूत्रों के आधार पर उन्होंने अपने स्पंद कारिका की 52 कारिकाएं लिखी। इनके 2 शिष्य हुए हैं कल्लट और सोमानंद। कल्लट ने त्रिक दर्शन का और सोमानंद ने प्रत्यभिज्ञा दर्शन का प्रतिपादन किया। सोमानंद के शिष्य उत्पल थे और उनके प्रशिष्य थे प्रसिद्ध अभिनव गुप्त पादाचार्य। कई पंडित इस परिणाम पर पहुंचे हैं कि शैवागमों में जितना अद्वैत मत है, उससे भी अधिक इस प्रत्यभिज्ञा मत में है। हम पहले ही लक्ष्य कर चुके हैं कि पूर्वी भारत में फैले हुए शाक्त मत के साथ इस कश्मीरी शैव मत का संबंध था, पर इसका मतलब यह नहीं है कि शक्ति पूजा शैव मत की इसी समय की निकली हुई एक शाखा है। कुछ विद्वानों ने इस प्रकार समझाने की चेष्टा की है। यह संभव है कि शक्ति मार्ग शैव मार्ग की ही एक शाखा हो, परंतु यह अनुमान का ही विषय है। जो तथ्य हमें उपलब्ध है उनके आधार पर हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि हमारे आलोच्य काल में शाक्त मत शैव मत से अलग वैशिष्ट्य रखता है। कुब्जी कामत तंत्र की एक प्राचीन प्रति गुप्तकालीन लिपि में लिखी हुई मिली है। इसका अर्थ यह हुआ कि कुब्जी कामत तंत्र हमारे आलोच्य काल के पूर्व विद्यमान था। संवत 901 का लिखित परमेश्वर मत तंत्र और उसी समय का महकुलांगला विनिर्णयंत्र तंत्र प्राप्त हुआ है। बाण भट्ट की पुस्तकों से शाक्त मत के पृथक अस्तित्व का समर्थन होता है। शैव आगमों की ही भांति इन शाक्त तंत्रों में अद्वैत स्वर की प्रबल है। सम्मोहन तंत्र अध्याय 8 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि शक्ति और नारायण एक ही हैं। जो आदि नारायण है वे ही परम शिव हैं, वे ही निर्गुण ब्रह्म हैं। आद्या ललिता महाशक्ति ने ही श्री कृष्ण और श्री राम का पुरुष विग्रह धारण किया था, अध्याय 9। और मूर्ख लोग ही राम और शिव में भेद देखते हैं। शैव और शाक्त दोनों ही 36 तत्वों में विश्वास करते हैं। आगे चलकर शैवों में नाथ, कापालिक, रसेश्वर आदि कई संप्रदाय हुए हैं, जिनका तत्व ज्ञान थोड़ा बहुत भिन्न है, परंतु सर्वत्र मूल स्वर अद्वैत प्रधान है। कौलावली निर्णय 21वें अध्याय में शैव पद, विष्णु पद, हंस पद, निरंजन पद और निरालंबन पद को एक ही परम पद का नामांतर बताया गया है। उदाहरण स्वरूप, एतस्या परता परातत्पर निर्वाण शक्ति पदम शैवम शाश्वतम प्रमे सम्मलम नित्योति निष्क्रियम तत्क्षणो पद्मच्यन्ति सुधिया केचित पदम ब्राह्मणम कचिद सत पदम निरंजन पदम केचित निरांबलम। कौलावली निर्णय पृष्ठ 140। सम्मोहन तंत्र में 22 भिन्न भिन्न आगमों का उल्लेख मिलता है, जिनमें चीनागम, पाशुपत, पांच रात्र, कापालिक, भैरव, अघोर, जैन और बौद्ध आगमों की चर्चा भी है। उस समय ये सभी मत प्रचलित रहे होंगे। बौद्ध तंत्र की तो अनेक बातें प्रकाशित हुई हैं, पर जैन मत के तंत्र अभी तक प्रकाशित नहीं हुए हैं। हेमचंद्र के योग शास्त्र आदि ग्रंथों के अनुमान किया जा सकता है कि हमारे आलोच्य काल में जैन मत में भी निश्चय ही तंत्रों का प्रचार रहा होगा। इस काल की समाप्ति के आसपास ही परम शक्तिशाली भागवत पुराण का अभ्युदय होता है। उत्तरकालीन धर्म मत और साहित्य को इस पुराण ने अधिक प्रभावित किया है। इस काल का दूसरा महत्वपूर्ण ग्रंथ है श्री भाष्य। इन दोनों ग्रंथों का प्रभाव उत्तरकालीन वैष्णव संप्रदायों पर बहुत अधिक पड़ा है। आगे चलकर पांच रात्र संहिताओं, विष्णु पुराण और श्री भाष्य का आश्रय लेकर एक वैध मार्गी वैष्णव साधना विकसित हुई है और दूसरी रामानुगा मार्गी या आवेश या उल्लास में भक्ति मार्गी साधना भगवान का आश्रय लेकर विकसित हुई है। उत्तर काल के वल्लभ और चैतन्य संप्रदाय भागवत को परम प्रमाण के रूप में स्वीकार करते हैं। भगवान भागवत पुराण श्री कृष्ण के प्रेम मूलक भक्ति धर्म का प्रतिपादक है। इस पुराण के अनुसार श्री कृष्ण साक्षात भगवान हैं और अन्य अवतार अंश कला मात्र हैं। भगवान के दो रूप हैं, निर्वच्छिन्न चैतन्य निराकार रूप और सत्ताविच्छिन्न चैतन्य साकार रूप। आगे चलकर भागवत और संहिताओं के इन दो उत्सों से चार वैष्णव संप्रदायों का प्रादुर्भाव हुआ है। ये चार है श्री वैष्णव, ब्रह्म, रुद्र और सन। श्री वैष्णव मत के आचार्य रामानुज, विशिष्टा द्वैत मत के, ब्रह्म संप्रदाय के आचार्य मध्व आनंद देव द्वैत के, रुद्र संप्रदाय के आचार्य विष्णु स्वामी और उनके अनुयायी श्री वल्लभाचार्य शुद्धा द्वैत के और सनक संप्रदाय के आचार्य निम्बार्क द्वैता द्वैत मत के प्रवर्तक है। चैतन्य संप्रदाय यद्यपि मध्व मत की ही शाखा है, पर उसका अपना विशाल साहित्य है और उसके सत्ववाद का नाम अचिंत्य भेदा भेदवाद है। इस उत्तरार्ध काल की विशेषता यह है कि संप्रदायों का प्रौढ़ संगठन भारतवर्ष में शायद ही उतने संघबद्ध रूप में संप्रदाय का भी आविर्भाव इससे पहले हुआ हो। दक्षिण में जब इस भक्ति मूलक वैष्णव धर्म का अभ्युदय हो रहा था, तब उत्तर में एक शक्तिशाली योग मत का प्रादुर्भाव हुआ है। उसकी कहनी कहे बिना हमारे आलोच्य काल का इतिहास अधूरा ही रह जाएगा। आगे चलकर इस योग मार्ग का संबंध भक्ति मार्ग के साथ हुआ और कबीर दास के द्वारा दोनों के समन्वय से एक नवीन साधना मार्ग का प्रादुर्भाव हुआ है। यह घटना हमारे आलोच्य काल के बाद की है, इसलिए उसकी चर्चा यहाँ नहीं कही गई है।